अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। 21 में पढ़ना नेक्स्ट। अनुवाद पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 21। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या ना हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है या अंतर्यामी है, ब्रह्म में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्र को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्ति में सेवा में लगने की आवश्यकता है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावदेतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखा निवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन ईश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए श्लोक पे कुछ चर्चा और समझने का प्रयास करेंगे। जो थीम प्रेजेंट किया जा रहा है, ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के उपरांत वो अपने कारण की खोज कर रहे हैं, और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो परम कारण जो सब कारणों के कारण है उनकी खोज करना ये सभी जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। कि इस जीवन में हम किसी समय आकर वो सब कारणों के कारण उन परम भगवान की खोज कर सकें, ये पूरी साधना भक्ति का मार्ग और विशेषता ब्रह्मा जी जिनकी चर्चा की जा रही है वो संप्रदाय आचार्य हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसकी ये शाखा इस्कॉन में हम हैं, उस संप्रदाय आचार्य ब्रह्मा जी वो मूड प्रेजेंट कर रहे हैं कि संप्रदाय के अनुयायियों का क्या भाव रहना चाहिए। और यही चैतन्य महाप्रभु, श्री गोस्वामी, शिला प्रभुपाद सबने यही प्रस्तुत किया इस परंपरा में कि वो कृष्ण की खोज। तो इस रूप गोस्वामी जी के द्वारा दिए गए इस पथ पे जो भी साधना भक्ति के मार्ग पे चल रहा है वो जाने अनजाने कृष्ण की खोज में लगा है। अब कोई कृष्ण के किसी पक्ष से प्रभावित है, कोई कृष्ण के किसी पक्ष से प्रभावित है, पर वो खोज कृष्ण की ही है। शिला प्रभुपाद तो एक स्टेप और आगे जाकर कृष्णा पुस्तक में ये कह देते हैं कि सभी लोग कृष्ण की खोज में लगे हैं, सिर्फ साधक ही नहीं सभी जीव कृष्ण की खोज में लगे हैं। तो आश्चर्य है कि प्रभुपाद कहते हैं कि सभी जीव कृष्ण की खोज में लगे हैं, पर ऐसा दिखाई तो देता नहीं है कि सभी कृष्ण की खोज में लगे हैं। अभी इस मंदिर से बाहर निकलते तो ऐसा कहीं नहीं नजर आता कि सभी लोग कृष्ण की खोज में लगे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कृष्ण मतलब सच्चिदानंद विग्रह, तो सभी लोग सत चित और आनंद की खोज में लगे हैं। तो जब सभी लोग सत चित और आनंद की खोज में लगे हैं तो जाने अनजाने में सभी लोग कृष्ण की खोज में लगे हैं। कोई जानता है कि ये सब कृष्ण के पास मिलेगा, और कोई बस अभी जानता नहीं कि ये जो खोज है उसकी वो पूरी कृष्ण के पास होगी, बस अंतर इतना ही है। तो एक भक्त और अभक्त में जो अंतर है वो इसी बात का अंतर है कि भक्त जानता है कि ये सच्चित आनंद मिलेगा कहाँ, और एक भक्त अभक्त इस बात से अभी परिचित नहीं कि ये सच्चित आनंद मिलेगा कहाँ। पर एक दृष्टि से दोनों की खोज तो कृष्ण की है। एक घटना है यूरोप की कि एक व्यक्ति वो एक नॉवल पढ़ रहा था, और वो नॉवल था एक ऑथर का जिसका नाम था कृष्णमूर्ति। और उन्हीं दिनों वो एक कुत्ता लेकर आया अपने घर, और वो सोचने लगा इस कुत्ता का नाम क्या रखूं। तो उसने उस ऑथर के नाम पे ही कुत्ते का नाम रख दिया कृष्णा। वो जानता नहीं था कि कृष्ण वास्तव में कौन व्यक्ति है, ये किसका नाम है ओरिजिनली, लेकिन वो ऑथर का नाम था कृष्णमूर्ति, तो उसने अपने कुत्ते का नाम भी कृष्णा कर दिया। तो जब कुत्ते का नाम भी कृष्णा कर दिया तो अब सुबह शाम कृष्ण को बुलाता कुत्ते को था, लेकिन कृष्ण का नाम लेता था, कृष्णा वेयर आर यू, जब भी घर आता था वो कृष्णा वेयर आर यू। एक तरह से छह गोस्वामी भी यही कह रहे थे, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुता, कृष्णा वेयर आर यू, आप कहाँ हैं कृष्ण? गोवर्धन में है, कल्प पादप में है, कालिंदी वन में है, आप कहाँ हैं कृष्ण? तो वो व्यक्ति भी अपने कुत्ते को रोज आके घर खोजता था और कहता था, ओ कृष्णा वेयर आर यू। एक दिन कृष्णा कृष्णा कर रहा था लेकिन वो कुत्ता तो बाहर नहीं आया, और वो खोजने लगा, अरे कहाँ चला गया मेरा कुत्ता? तो कहीं कुत्ते का आसपास पता नहीं चला, उस बिल्डिंग में पता नहीं चला, पार्क में नहीं पता चला, तो ढूंढता ढूंढता सड़क पे आ गया, ओ कृष्णा वेयर आर यू, जोर जोर से चला रहा था, ओ कृष्णा वेयर आर यू। तो देखा कि सामने से वो वहां पर जो उस एरिया में जो इस्कॉन का टेम्पल था, उनकी कीर्तन पार्टी, स्ट्रीट कीर्तन पार्टी, शाम को वो हरिनाम संकीर्तन करती हुई आ रही थी और वो भी कृष्ण का नाम बोल रहे थे। तो इसको हैरानी हुई, अरे इनको कैसे पता चला कृष्णा खो गया है, मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं। तो ये पास गया उनके और बोला, आप कृष्ण को ढूंढ रहे हो? बोला हाँ, हम सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, भक्त बोल रहे हैं। बोला मैं भी कृष्ण को ढूंढ रहा हूं। तो बोले आप अकेले क्यों ढूंढ रहे हो, हमारे साथ मिलकर ढूंढ रहे हो? तो वो भी उनके साथ चल पड़ा और वो भी कीर्तन में भाग लेने लगा। अभी काफी देर हो गई और ये देखता कि बीच बीच में भक्त लोग थे, हाथ खड़ा करते थे। तो बोला ये आप हाथ खड़ा करके क्यों बोलते हो? कहते ऐसे ही तो मिलते हैं कृष्ण। कहता अच्छा, कह मुझे पता नहीं था ऐसे मिलते हैं। ये भी हाथ खड़ा करके बोले, ओ कृष्ण वेयर आर यू। तो चलते चलते अभी वो संकीर्तन शाम को मंदिर पहुंच गया। तो बोला ये कहाँ आ गए? बोले यही तो है कृष्ण। तो ये सोचा इतनी दूर आ गया अपने आप। तो अंदर आया तो देखा, बोला कहाँ है वो कृष्ण? बोला ये तो सामने खड़े। तो बोला मैं तो इसको नहीं ढूंढ रहा था, वो तो कोई और कृष्ण था मेरा। तो अंततः वो भक्त बन गया। तो प्रभुपाद जी का कहना, सभी कृष्ण की खोज में लगे हैं, कोई जाने कोई अनजाने। हम भी बिना जाने पूरे जीवन में कृष्ण की खोज करते थे, सच्चिदानंद ढूंढते ढूंढते, भक्तों के संपर्क से उस सच्चिदानंद के चरणों के आश्रय को स्वाभाविकता प्राप्त किया। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद एक स्थान में कहते हैं, समझ आते हैं, बिल मंगल ठाकुर एक स्थान पे कहते हैं, कृष्ण का एक नाम है लोचन रसायन, जिसका मतलब है, लोचन मतलब नेत्र, रसायन मतलब आयुर्वेद में जाएंगे तो कुछ औषधि होती है और कुछ रसायन होते हैं। रसायन का होता है मतलब कि उसे लेने से पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, वो एक डेड बॉडी को भी एक एनर्जी एनर्जाइज कर देता है, उसे रसायन बोलते हैं। तो बिल मंगल ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण का, कृष्ण लोचन रसायन है, यानी कि जो उनका दर्शन करेगा वो स्फूर्तिमय हो जाएगा, वो एनर्जाइज हो जाएगा, वो शक्ति से भर जाएगा, क्योंकि कृष्ण वो सच्चिदानंद है जिनकी हम खोज जन्म जन्मांतरों से कर रहे हैं, हालांकि पूरी नहीं हुई आज तक, वो खोजी बनी है, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जैसे आचार्य के आश्रय में आकर उस रास्ते पर आ गए कि जहां पर इस खोज को कभी ना कभी अगर हम चलते रहे तो विराम जरूर मिल जाएगा, एक वो खोज पूर्ण जरूर हो जाएगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में उस परम कारण की खोज के लिए बल दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद एक बहुत सुंदर पंक्ति में इस विषय में कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण भक्ति का लक्षण है, यानी कि जहां आत्मसमर्पण पाया जाएगा वहां भक्ति है। और प्रभुपाद बहुत ब्रॉडली इस आत्मसमर्पण को कैटेगराइज कर रहे हैं। प्रभुपाद ब्रह्म ज्योति, अंतर्यामी परमात्मा पर ध्यान, साक्षात परम भगवान, जो कि बाकी अंश चाहे अंतर्यामी परमात्मा या ब्रह्म आदि उन्हीं परम भगवान के ही अंश हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे आत्मसमर्पण हो उन सब के प्रति भी, वो भी एक दृष्टि से भक्ति का ही लक्षण है। भगवद गीता के प्रथम छह अध्यायों में भगवान कृष्ण इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जीव कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग आदि को करता हुआ अंततः उद्देश्य भक्ति योग के आश्रय में आता है। और भक्ति का मतलब है शरणागति। अब कठिनाई ये है कि भगवान कृष्ण हमसे अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं, कि हमारी शरणागति बिना किसी शर्तों के हो। लेकिन हम बद्ध जीव, तो बद्ध जीव का मतलब है कि वो अपनी कंडीशंस के साथ बंधा हुआ है, वो अपनी कंडीशंस और अपनी शर्तों से बंधा हुआ है। तो इसीलिए हम अपने पूरे जीवन में अगर अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ कंडीशनल है, शर्तों के साथ बंधा है। चाहे इस शरीर की मेंटेनेंस की भी बात करें तो उसकी भी कंडीशंस हैं, इस बॉडी की मेंटेनेंस को लेकर भी कृष्ण गीता में इस बात को पहचानते हुए कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, कि इंद्रिय भोग आवश्यक है लेकिन रेगुलेटेड। इस बॉडी को मेंटेन करना आवश्यक है। तो चाहे हम शरीर नहीं लेकिन हमारे पास शरीर तो है, तो जब हमारे पास शरीर है तो अब इस शरीर की मेंटेनेंस भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो कृष्ण की संपत्ति है। और जो भी कृष्ण की संपत्ति है अगर हम उसे निग्लेक्ट करें, चाहे वो बॉडी क्यों नहीं है, जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी जब शरीर त्यागना चाहते थे जगन्नाथपुरी में, अपने शरीर में हुए रोग और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बार बार आलिंगन के कारण वो छोड़ना चाहते थे शरीर की, नहीं मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने से वो दूषित हो रहे हैं, तो रथ यात्रा में रथ के नीचे आके अपने देह को त्याग दूंगा। तो सनातन गोस्वामी के मन की बात को जानते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरी संपत्ति है। तो एक दृष्टि से भक्ति मार्ग में ईशावास्यम इदम सर्वम, ये देह भी भगवान और गुरु का है, तो इसीलिए उसकी मेंटेनेंस भी की जाती है, तो वो भगवान की सेवा के लिए की जाती है। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद ट्रिपल एस फॉर्मूला में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हेल्थ, फिर साधना की बात करते हैं और फिर मिशन यानी सेवा की बात करते हैं। तो वही मिशनरी हो पाएगा जो व्यक्ति साधना में उन्नत होगा, और साधना में उन्नत होने के लिए शरीर की देखभाल भी आवश्यक है, तो वो भी साधना भक्ति का पार्ट है। हम गोस्वामियों की तरह जीवन नहीं जी सकते। प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं इफ यू ट्राई टू इमिटेट सिक्स गोस्वामीज यू विल डाई, आप मर जाएंगे, क्योंकि हम सब कंडीशन स्टेज में। तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कंडीशंस हैं, आहार निद्रा विहार आदि, वो कंडीशन से हम बंधे हुए हैं। और ग्रॉस बॉडी ही नहीं, हमारी सूक्ष्म शरीर की भी कंडीशंस हैं, हमारी इमोशनल नीड्स, सोशल नीड्स, ये सूक्ष्म शरीर की कंडीशंस हैं। अगर वो फुलफिल ना हो तो आज की सोसाइटी का हाल देखते हैं हम, कि किस प्रकार से मन संतुलित नहीं है उनका, कैसे वो सूक्ष्म शरीर, जैसे शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है तो मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। तो एक स्वस्थ शरीर को आप हेल्दी बॉडी कहते हैं। सिमिलरली हेल्दी माइंड का मतलब है सेटिस्फाइड माइंड, हैप्पी माइंड, संतुष्ट मन, खुश मन, तो उसका होना भी आवश्यक है, उसकी भी कंडीशंस है। तो मनुष्य जीवन जीने में हर जगह कंडीशंस है। तो चाहे आप विवाह का संबंध बनाते हैं तो कंडीशंस रखते हैं, इतना शादी में पैसा लेंगे, हाँ ऐसा शादी चाहिए हमको, लड़का ऐसा होना चाहिए, उसका इतना पे पैकेट होना चाहिए, वो दिखना में ऐसा होना चाहिए, उसका घर ऐसा होना चाहिए, वो इस रिलीजन कास्ट का होना चाहिए, लड़की ऐसा होना चाहिए, कंडीशंस है। एक विवाह का संबंध भी बनाते हैं तो वहां भी बहुत सारी शर्तें आसपास हमको देखने के लिए नजर आती हैं। आप कोई जॉब करने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो एम्प्लॉयर की कुछ कंडीशंस हैं, एम्प्लॉयर कहता है इतना घंटा काम करना पड़ेगा, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको, ये अनुभव होना चाहिए, ये आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उसी तरह से फिर एम्प्लॉयज की भी कंडीशन है, इतना पैसा दोगे, इतना छुट्टी दोगे, ये फैसिलिटी दोगे, तभी काम करूंगा। तो चाहे शादी करें, नौकरी करें, इस शरीर का पालन करें, हर जगह कंडीशंस नजर आती हैं। तो जब से हम जन्म लिए इस शरीर में, हम अपनी कंडीशंस के साथ बंधे हुए हैं, और जब साधना भक्ति में भी आते हैं तो वहां भी हम कंडीशंस लगाते हैं कि भगवान ये देंगे, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ मिलेगा तो करेंगे भक्ति, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, उत्साह नहीं रखेंगे। क्योंकि हम सब कंडीशन सोल्स हैं, कंडीशन से बंधा जीवन जिया है, और भक्ति में आए हैं तो कंडीशंस लेकर साथ आए, इसीलिए हम सब कंडीशन सोल्स हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं। भगवान की भक्ति में भी शर्तों को हम पहले प्रस्तुत कर रहे होते हैं। शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में इस्कॉन सेंटर को एस्टैब्लिश करने के बाद अमेरिका में दूसरा जो पहला शहर उन्होंने वेंचर किया वो सैन फ्रांसिस्को था, और प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में गए तो न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा हिप्पी सैन फ्रांसिस्को में थे। एक एरिया था हिप्पी हिल, जहाँ पर हिप्पी हिप्पी रहते थे सैन फ्रांसिस्को में। सो प्रभुपाद को हिप्पीज ने एक अपनी एक प्रोग्राम में इन्वाइट किया, और प्रभुपाद जी वहाँ गए तो प्रभुपाद ने देखा सब ने येलो ड्रेस पहनी थी, सब हिप्पीज ने, और येलो ड्रेस पहन के सब हिप्पी लोग डांस कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा अपने डिसाइपल्स से कि ये क्या है, सब येलो ड्रेस में क्यों है यहाँ पे सब? तो कहते हैं प्रभुपाद, इन्होंने ये इनका थीम है आज पार्टी का बनाना डांस, तो ये बनाना डांस कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये क्या होता है? बोले इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है नशा करने का, कि जो बनाना केले का पील होता है वो पील के स्मोक से LSD से भी ज़्यादा नशा होता है। तो इन्होंने नया इन्वेंशन किया है नशे का, तो उसकी खुशी में ये बनाना पार्टी कर रहे हैं आज, तो इसीलिए बनाना डांस हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं कलकत्ता में मैंने कई केले खाए और कई तरह के केले के उपयोग देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि केले को ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ प्रवचन दिया, सब कुछ दिया और वापस आ गए, और अगले दिन हिप्पी लोग केले का एक इतना बड़ा क्रेट लेकर आए जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के लिए। तो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है? तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कहा वो हिप्पी लोग बहुत खुश हैं प्रभुपाद, आपसे बहुत प्रभावित हुए, और वो हर रोज एक बनाना का क्रेट जगन्नाथ को देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहते लेकिन प्रभुपाद उनकी एक कंडीशन है। प्रभुपाद कहते क्या? कहते हैं वो छिलका वापस चाहते हैं। तो कंडीशन सोल मतलब शर्तों से बंधे हैं, भगवान को देंगे भी तो शर्त है तभी देंगे, पूरा होगा तो तभी। प्रार्थनाएं भी ऐसी है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये होगा तो ओम जय जगदीश हरे। तो उसी प्रकार से हम सब शर्तों से बंधे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सेल्फ सरेंडर, ये वॉलंटियर है, स्वेच्छा से किया गया बिना शर्तों के, राखो भी मारो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास अप्रति तुआ दिखा, कि भगवान रखना चाहें मारना चाहें कैसी भी परिस्थिति में रखना चाहें उनका पूरा अधिकार है, ये अनकंडीशनल सरेंडर है। तो हम सब कंडीशनल सरेंडर पे खड़े हैं, शरणागति ले रहे हैं भगवान की लेकिन विद कंडीशंस। लेकिन ये भागवतम हमें कंडीशनल सरेंडर से अनकंडीशनल सरेंडर तक ले जाने के लिए बना है। तो वास्तव में भागवतम का श्रोता वक्ता उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो इस स्थिति पे खड़ा हो कि वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन क्यों आवश्यक है हमारे लिए, ताकि हम इन कंडीशंस को छोड़ के अनकंडीशनल भक्ति की तरफ आ सके। बिना शर्त की भक्ति, भगवान का प्रेम की भक्ति, प्रेममयी सेवा। तो प्रेम का अभिप्राय रूप गोस्वामी कहते हैं, जहां पर प्रत्येक कारण और संबंध तोड़ने का लेकिन फिर भी संबंध ना टूटे उसे वास्तव में प्रेम कहा जाता है। तो प्रत्येक कारण भी नजर आए भगवान से संबंध तोड़ने का लेकिन फिर भी हम संबंध ना तोड़े भक्तों से संबंध तोड़ने का, आचार्यों से संबंध तोड़ने का, फिर भी ना तोड़े, तो ये प्रेम है वास्तव में। और ये स्टेज श्रीमद् भागवतम हमको प्रदान करता है। जैसे भगवान रामचंद्र जब सीता माता जी की खोज में चल रहे थे, तो सीता माता की खोज में भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव के संपर्क में आए, और जब सुग्रीव ने पहली बार राम लक्ष्मण को आते देखा तो उनको लगा जरूर वाली ने भेजा इनको मारने के लिए मुझको, ये वाली के दूत लगते हैं, कुछ मैसेंजर है उनके, कुछ अनुयायी हैं। तो हनुमान को सुग्रीव जी ने बोला, हनुमान जाओ जरा पता करो ये लोग कौन आ रहे हैं। तो जाकर जब हनुमान जी आकर पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं उत्तर में कि ये हैं दशरथ नंदन श्री रामचंद्र, और ये मुझे अपना भाई कहते हैं। लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा मैं इनका भाई हूं, ये मुझे अपना भाई कहते हैं। कि भगवान हमें स्वीकार करें या ना करें ये कंडीशन पे बेस नहीं, कि हमारी शर्तें पूरी होंगी तो हम एक्सेप्ट करें या भगवान हमें एक्सेप्ट करें, ये अनकंडीशनल लव है, ये बिना शर्त के प्रेम है। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है ये आपको किसी शास्त्र किसी संप्रदाय में देखने के लिए नजर नहीं आएगा, जहां के भगवान के प्रति समर्पण में इतना एक्सट्रीम है कि एक व्यक्ति स्वयं को भी किस प्रकार से वो वामन देव बलि महाराज को जब सब कुछ हरने के बाद बांध देते हैं वरुण पाश्ते, ब्रह्मा जी आकर एडवोकेट बन जाते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं ओ वामन देव आप कहते हो कि आपको पत्ता पुष्प फल जल दिया जाए आप उससे भी प्रसन्न हो जाते हो, यहां तो बलि ने अपना सब कुछ आपको दे दिया है और आप फिर भी इसको सजा दे रहे हो। तो भगवान वामन देव कहते हैं वो ब्रह्मा जी मैं पूरे संसार को बलि के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं कि देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं हूं, ये मैसेज मैं पूरे संसार को देना चाहता हूं। तो आत्मनिवेदनम जो कि बलि महाराज भागवतम में हमें अपने उदाहरण से सिखाते हैं। अब सुग्रीव जी ने जो भगवान रामचंद्र जी के साथ संबंध बनाया वो कंडीशंस पे आधारित था, कि मैं आपकी सहायता करूंगा माता सीता की खोज करने के लिए, आपको मेरी सहायता करनी होगी मेरे शत्रु से छुटकारा पाने के लिए वाली से। तो उसी प्रकार से भगवान के मिशन में आकर भी अगर हम कंडीशंस को रखें तो भगवान बहुत दयामय है और वो हमारी कंडीशंस को पल में पूरा कर सकते हैं जो हम मांगते हैं भगवान से आके। इसीलिए जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक्सरे मशीन्स लगी रहती हैं, जब आप एक्सरे मशीन से पास करते हैं आपके अंदर क्या है, बैग में क्या है, बाहर क्या है, एक एक चीज नजर आती है। तो कृष्ण भी एक्सरे मशीन की तरह है, जब हम कभी उनके सामने आके खड़े होते हैं आप कुछ हाइड नहीं कर सकते उनसे, हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम पूरी दुनिया को धोखे में कर सकते हैं, हमारे सबसे करीब के लोग भी हमारे बारे में नहीं जानते, ये वास्तविकता है ना। हम एक दूसरे को बहुत थोड़ा ही समझ पाते हैं उनके एक्शंस उनके वर्ड से, लेकिन मन की बात हम किसी की नहीं समझते, बहुत रेयर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ना, प्रथम दर्जे का शिष्य वो जो गुरु के कहने से पहले जानता है गुरु क्या चाहते हैं, ये बहुत रेयर है। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये न भूतले, कि चैतन्य महाप्रभु के मन के वक्तव्य को समझते थे रूप गोस्वामी, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, सरल नहीं है। प्रभुपाद ने कहा सेकंड क्लास डिवोटी वो है जो गुरु कहे वो करता है, ये सेकंड क्लास है। और प्रभुपाद ने कहा कम से कम इस शरीर को छोड़ने से पहले सेकंड क्लास बन जाना, इसका क्या मतलब है कि हार्डली ऐसे भी नजर आएंगे आप कि जो गुरु कह रहे हैं वो कर रहे होंगे अपने जीवन में। और कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रभुपाद पहली बार मिले उल्टा डंगा कलकत्ता में, तो जब पहली बार मिले तो देखते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि तुम पढ़े लिखे हो और जाओ चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो, ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये आदेश नहीं था, ये विजन था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये देख रहे थे कि ये करने आया है, ये है जो करेगा इस बात को। तो ये और भी आगे की बात है कि गुरु देख पा रहा है कि ये शिष्य क्या करने जा रहा है आगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था ना, जब उन्हें कहा गया कि अभय बाबू को अलाहाबाद मठ का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो भक्त सिद्धांत महाराज का एक दिन आएगा ये अपने आप खुद करेगा सब कुछ, इसको भी जहां है वहीं रहने दो और वही करने दो इसे। तो अनकंडीशनल सरेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये साधारण नहीं है, ये बहुत अद्वितीय है अपने आप में। लेकिन भगवान ये चाहते हैं हमसे, हालांकि वो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है हम, मैं खुश हो जाता हूं इससे ही, पर भगवान ये अप्रिशिएट करते हैं लेकिन उनकी हार्ट निर्धारित है नहीं। इसीलिए वो कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, अन्यथा एंड में आकर सर्वधर्मान परित्यज्य कहने का क्या अभिप्राय है। अगर वो सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम से ही खुश होते, सिर्फ वही चाहते होते तो फिर सर्वधर्मान तक पहुंचे ही क्यों, क्या आवश्यकता थी सर्वधर्मान तक पहुंचने की। जब वो ये कहते हैं कि नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम स्वल्प भक्ति भी महान भय से रक्षा करेगी, लेकिन इसको कहने के बाद भगवान रुके नहीं है, वो फिर सर्वधर्मान तक गए हैं और फिर वो सर्वधर्मान की बात कर रहे हैं और वो इसेंस है पूरी भगवद गीता का सार है। तो स्वल्पम भक्ति हमको एनकरेज करती है, इसीलिए पूरी गीता दो पार्ट्स में डिवीजन में नजर आती है, एक तरफ भगवान ज्ञान देते हैं और दूसरी तरफ उस ज्ञान को पालन करने का प्रोत्साहन देते हैं। तो सिर्फ भगवान कमांड नहीं देते करो 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 करो, साथ साथ एनकरेज भी करते हैं तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसीलिए वैदिक शास्त्र कमांड बेस्ड नहीं है, वैदिक शास्त्र डिमांड बेस्ड नहीं है, वैदिक शास्त्र चॉइस बेस्ड है, चुनाव, क्योंकि जीव के पास स्वतंत्र इच्छा है। तो भगवान चुनाव दे रहे हैं कि ऐसा करो तो ये परिणाम पाओगे, नहीं करोगे तो ये परिणाम पाओगे, चॉइस तुम्हारी, बांध नहीं रहे भगवान। इसीलिए गीता बुक ऑफ चॉइसेस है, भागवतम बुक ऑफ चॉइसेस है, कि आप अपने जीवन में क्या चुनाव अपनाएंगे और उस चुनाव के साथ क्या परिणाम पाएंगे। तो इसीलिए वैदिक शास्त्र इस आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन भगवान हमसे जो सरेंडर चाहते हैं, जो शरणागति चाहते हैं, वो स्वेच्छा से चाहते हैं, वो बाय फोर्स नहीं है। भगवान कई बार कहते हैं लोग कि भगवान चाहते हैं तो सब भक्त क्यों नहीं बन जाते, क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करें और उसको उपयोग उनकी दृष्टि के लिए करें, हम अपनी फ्री विल का उपयोग करें उनके लिए। रामानुजाचार्य जी के एक प्रसिद्ध शिष्य थे कुरेश, ये कुरु प्रांत के ईश थे, कुरु क्षेत्र के जमींदार थे और इसीलिए इनको कुरेश कहा जाता। इनकी पत्नी का नाम था अंडाल और इतना धन राशि था इनके पास, ये 1000 साल पहले की घटना है, कितना धनी भारत था, इतनी संपन्नता थी लोगों के पास, साधारण लोगों के पास भी। जो चीनी यात्री भारत में पहली बार आया उसे हमने रिकॉर्ड्स में प्रेजेंट किया है कि उसने पूरे भारत के भ्रमण के बाद एक भी भिखारी नहीं देखा, लोगों को घर में ताला लगाते नहीं देखा, क्योंकि चुराएगा कौन, भीख कौन लेगा। रामायण में भी ऐसा लिखा है कि दशरथ महाराज को ढूंढना पड़ रहा था कि किसको भिक्षा दें, कोई लेने वाला ही नहीं था, क्योंकि लोग इतने सेटिस्फाइड थे अपने जीवन में, कौन लेगा, तो ढूंढना पड़ता था किसको देना है। तो कुरेश इतने धनी थे कि उनके महल का रोज दरवाजा खुलता था और सारा दिन सिक्कों की खन खन आवाज आती थी और गोल्ड कॉइन्स, सुबह से शाम जो भी मांगने आता था उसको भर भर के देते थे। तो कांचीपुरम में लक्ष्मी जी को ये आवाज सुनाई देती थी और लक्ष्मी जी ने वरदराज जी से पूछा, वरदराज जी कांचीपुरम के प्रिसाइडिंग डीटी है, बड़े महत्वपूर्ण भगवान माँ का विग्रह है, माँ का 5000 मंदिर है लगभग, लेकिन वरदराज मोस्ट प्रोमिनेंट। तो वरदराज जी से पूछा लक्ष्मी जी ने, भगवान ये रोज आवाज कहाँ से आती है इतनी? तो वरदराज जी ने अपने पुजारी को पूछा, ये आवाज कहाँ से आती है? तो पुजारी कहता है, भगवान ये आपके अनन्य भक्त कुरेश के घर से आती है। तो वरदराज जी कहते हैं, क्यों? बोले वो सुबह से इतने दान लेने वाले आते हैं उसके पास, जो आता है उसको भर भर के देता है, सब पूरा दिन सिक्के की खन 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 की आवाज आती है। तो वरदराज जी ने लक्ष्मी जी को बताया ऐसा आवाज आता है इस कारण से। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवान मैं कुरेश से मिलना चाहती हूँ। पुजारी को बोला, कुरेश को बुला के लेकर आओ। तो पुजारी भगवान से बात करता था, जैसे सनातन गोस्वामी भी 525 साल पहले मदन मोहन जी से बात कर रहे थे। तो पुजारी वरदराज जी से बात करता था, वरदराज जी ने संदेश दिया, पुजारी दौड़ा दौड़ा गया कुरेश जी के महल में और कुरेश को कहते हैं, कुरेश आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम्हें स्वयं लक्ष्मी जी मिलना चाहती हैं। आप सोच के देखिए, हमको अगर ऐसा इन्विटेशन आए कि लक्ष्मी जी हमको मिलना चाहती है, सब काम अपॉइंटमेंट छोड़ के दौड़ के जाएंगे कि नहीं, है ना? एक दिन उनकी कृपा पाने के लिए लोग कितना उतारू रहते हैं ना, साल में एक दिन आता दीपावली का दिन, हे मैया अपनी कृपा बनाए रखना अपनी हम पे, सब खिड़की दरवाजा खोल के सोते हैं कि लक्ष्मी जी कहीं से भी घुसेंगी, घुसती हैं कहीं और से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि सब खोल के रखा होता। तो वो लक्ष्मी जी का जब इन्विटेशन आया तो कुरेश कहते हैं, क्यों बुलाना चाह रही है वो मुझे, क्यों चाहती है मिलना? तो पुजारी कहते हैं, वो तुम्हारे दान देने के गुण से इतनी प्रभावित है, तुमसे मिलना चाहती है। कुरेश सोचने लगे कुछ सेकंड और कहते हैं, मैं नहीं मिलना चाहता। तो कुरेश का भाव क्या था कि अगर लक्ष्मी मेरे दान देने से प्रभावित और मेरी भक्ति से प्रभावित नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। ये दान देना आसान है, कोई भी दे सकता है, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस भगवान को देना कई जन्मों का प्रोजेक्ट है। हम हालांकि इस्कॉन प्रोजेक्ट्स में अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने दान भी दिया, लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो डिमांड किया था वो ये था कि अपनी स्वतंत्रता मुझे दे दो। अध्याय एक को पढ़ते हैं गीता में, तो अर्जुन कहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है कृष्ण, मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा परिणाम मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, बाढ़ में गए तुम्हारे ओपिनियन, तुम युद्ध करो। तो हम भी कहते हैं, मेरा ओपिनियन ये है कि भक्ति ऐसे की जाए, मेरा ओपिनियन ये है कि भक्ति ऐसे की जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम्हारे ओपिनियन गए बाढ़ में, ये तरीका है करने का अगर तुम इस जीवन में सफलता पाना चाहते हो। तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपने ओपिनियंस को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वहां फॉल्स ईगो है, मेरा मत। और अगर किसी ने मेरा मत नहीं एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आइडेंटिफाई करता हूं अपने ओपिनियंस के साथ, ये हमारी फॉल्स ईगो का कनेक्शन है। इसीलिए चाहे भक्त समाज या अभक्त समाज, सब जगह झगड़ा ओपिनियंस का ही है, कन्फ्लिक्ट ओपिनियंस का ही है कि मेरी राय से ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता है मेरी राय से ऐसा होना चाहिए। अब दो पार्टी थे, आप कौन सी पार्टी में शामिल हो? लेकिन कृष्ण कहते हैं, भाई मेरी भी तो राय सुन लो, तुम सब अपनी राय देने में लगे हो, कोई मेरी भी तो राय सुन लो, जिसके लिए काम करना चाहते हो तुम लोग, उसकी क्या राय वो भी तो जान लो। इसलिए आसान नहीं है ये इंडिपेंडेंस को देना। तो कुरेश कहते हैं, वो अगर मेरे दान देने से प्रभावित है तो मैं नहीं जाना चाहता, वो मेरी भक्ति से प्रभावित नहीं है। और अपनी पत्नी को कहते हैं, सभी यही छोड़ दो, इसी इमीजिएटली सब कुछ यही त्याग दो, और सब कुछ छोड़ के इसी समय हम जा रहे हैं यहां से, कुछ साथ नहीं लेके जाना, बस जो कपड़ा पहना है पहने रखो और छोड़ दो महल इसी समय। और कुरेश और उनकी पत्नी दोनों सब कुछ छोड़ के चलने लगे, और चलते चलते श्रीरंगम आ गए। तो श्रीरंगम आए तो रामानुजाचार्य जी को पता चला, अरे कुरेश आ रहा है, और वो तो राजा इतना बड़ा, उसके रहने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कुरेश के रहने के लिए एक छोटी सी जगह आयोजित की अपने ही आश्रम के अंदर। तो कुरेश और अंडाल दोनों आ गए उस आश्रम में। अब इतना चलते आए थे, भूखे थे, और कुरेश किसी से मांगते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे। तो भूखे पहुंचे, भूखे प्यासे, तो उनकी पत्नी ने उसी समय रंगनाथ जी को राजभोग ऑफरिंग हो रहा था, तो रंगनाथ जी का राजभोग ऑफरिंग हो रहा था और ऑफरिंग का बेल पुजारी बजा रहा था। तो बेल बजा रहा था और अंडाल के मन में विचार आया कि अगर ये महाप्रसाद कुरेश के लिए हमें मिल जाए, ऐसा थॉट आया एक क्षण के लिए। और इतने समय से भूखे आए थे, उसी समय ऑफरिंग के टाइम पर जब ये विचार आया कि ये महाप्रसाद कुरेश के लिए मिल जाए, अपने पति के लिए मिल जाए उनकी सेवा के लिए, तो थॉट आया और उसी क्षण वो थॉट चला भी गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। और कुछ देर के बाद जो वहां रह रहे थे जहां पर ये लोग, उनके झोंपड़ी को किसी दरवाजे ने खटखटाया और जब कुरेश ने जाके दरवाजा खोला तो देखा पुजारी इतना बड़ा थाल महाप्रसाद का लेके खड़ा। तो कुरेश देख के हैरान हो गए और पूछा ये क्या है। तो पुजारी ने कहा रंगनाथ ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा। तो कुरेश अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और कहते हैं कहीं तुमने कोई इच्छा तो नहीं की थी। तो अंडाल कहती है हां। कुरेश कहते हैं अब सारा तुम्हें खाना पड़ेगा। यह है अनकंडीशनल सरेंडर, साधारण नहीं है। इसीलिए जो नाम इन भागवतम के पन्नों में दिए गए हैं, ये नाम इन भागवतम के पन्नों में क्यों आए हैं? बहुत लोगों ने भक्ति की होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग जो ये भागवतम के पन्नों में नजर आते हैं यही लोग भक्त रहे होंगे। लाखों करोड़ों लोगों ने भक्ति की है, लेकिन यही नाम क्यों है? क्योंकि ये अपने स्वतंत्रता को छोड़ के उस भगवान के अनकंडीशनल सरेंडर को एक्सेप्ट कर पाए। और वही हमें श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में नजर आता है कि प्रभुपाद की शरणागति भगवान के प्रति शर्तों से बंधी नहीं थी कि मुझे अमेरिका में सक्सेस मिलेगी तो जाऊंगा, रहने की जगह मिलेगी तो जाऊंगा, खाने को मिलेगा तो जाऊंगा, मुझे सम्मान दिया जाएगा, असिस्टेंट दिया जाएगा तो जाऊंगा, व्हीकल होगा तो जाऊंगा। नो अरेंजमेंट्स, अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल। तो अगर कोई व्यक्ति साधक इस स्तर पर आ पाए, ये सक्सेस है साधना भक्ति की। बिलो दिस हम सब स्ट्रगलिंग साधक हैं, चाहे हम किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, आज आए हो या 20 साल पहले आए हो, हम सब अनर्थों से, अपने फॉल्स ईगो से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं जिन्होंने अपने उदाहरण से हमें ये प्रस्तुत किया। और एक दिन माधुर्य गोविंद महाराज कह रहे थे कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम वास्तव में शिष्य बने हैं तो हमें वैसा जीवन जीना होगा जैसा गुरु जीता, तब हम अपने आप को शिष्य कह सकते हैं। अदरवाइज वी हैव नो राइट टू कॉल आवरसेल्फ इवन डिसाइपल। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं हम प्रभुपाद के फॉलोवर हैं तो फिर हमें वो जीवन में करना होगा जो प्रभुपाद ने किया, जैसा जीवन प्रभुपाद ने जिया। तो प्रभुपाद ऐसे वैष्णव हैं जो पूरी पृथ्वी पे अपने जैसे वैष्णव बनाने के लिए आए। जब वो गुरुदास प्रभु प्रभुपाद के असिस्टेंट थे और सो रहे थे बाहर, प्रभुपाद रात को ट्रांसलेशन करते रहे थे, बेल कर रहे थे, उनको बुला रहे थे अंदर अपनी सेवा के लिए कुछ, तो गुरुदास प्रभु एक बार नहीं आए, बेल किया, दो बार नहीं आए, तीसरी बार बेल किया, दौड़ते हुए आए। तो प्रभुपाद ने कहा इतनी देर से क्यों आए? तो प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद रात का 1 बजे आए, मैं सो रहा था। प्रभुपाद कहते हैं मैं तो नहीं सो रहा। तो कहते हैं प्रभुपाद आप परमहंस हैं। प्रभुपाद कहते हैं आप क्यों नहीं? तो गुरुदास प्रभु अपने साक्षात्कार में कह रहे थे कि प्रभुपाद हम सबको परमहंस बनाने के लिए आए, लेकिन हम बड़े सस्ते में ही खुश हो जाते हैं कि ये पोजिशन मिल गई, भगवान से ये मांगा था एक घर मिल जाए वो मिल गया, भगवान से मांगा था एक लड़की मिल जाए वो मिल गई, भगवान से मांगा था कार मिल जाए वो मिल जाए, एक पोजीशन मिल गई, हम बड़े सस्ते में खुश हो जाते हैं। भगवान बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं लेकिन वो देख रहे हैं ये कहां अटकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं, सुदुर्लभा, ये शुद्ध भक्ति रेयरली अटेंड, ये साधारण नहीं है। और ये जो मार्ग है ये शुद्ध भक्तों का मार्ग है। इसीलिए बहुत आते हैं इस रास्ते पे लेकिन टिकते बहुत नहीं। कृष्ण गीता में कहते हैं 7th चैप्टर में ना, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु च भरत ऋषभ, कि आर्थ आते हैं अर्थार्थी आते हैं लेकिन जिज्ञासु नहीं बनते चले जाते हैं, जिज्ञासु बनते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं बनते चले जाते हैं, ज्ञानी बनते हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बनते चले जाते हैं। तो एकमात्र शुद्ध भक्ति अनकंडीशनल सरेंडर ही हमें इस भक्ति पथ पे बनाए रखेगा और वही एकमात्र हमारा अचीवमेंट है। हरे कृष्णा। ये विराम देंगे, कोई कमेंट हो इस विषय में या कोई आपका जिज्ञासा